नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 28 फरवरी 2020 के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, चीन से बाहर अन्य देशों में कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या में तेजी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जोखिम का स्तर बढ़ाकर अति गंभीर किया। दुनिया भर में मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों में कार्रवाई की कार्य योजना का खाका पेश। सीरिया में हिंसा और तेज होने पर गहरी चिंता। शुक्रवार को सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। 21वीं सदी को महिलाओं के लिए समानता सुनिश्चित करने वाली सदी बनाने की पुकार। और साफ ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने में क्या पेश आती हैं चुनौतियां, सुनिएगा एक खास इंटरव्यू। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। साथ ही एंड्रॉयड और आईफोन डिवाइस में आप हमारा न्यूज ऐप डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए UN न्यूज रीडर, जिसमें बाईं ओर भाषाओं की सूची में आपको हिंदी भी नजर आएगी। अब समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस यानी COVID-19 संक्रमण के मामलों और प्रभावित देशों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को चिंताजनक करार दिया है। साथ ही COVID-19 के जोखिम के स्तर को बढ़ाकर अति गंभीर की श्रेणी में कर दिया है। स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनोम गेब्रेयेसिस ने बताया कि पिछले 24 घंटों में चीन में संक्रमण के 329 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले एक महीने से ज्यादा समय में मामलों की सबसे कम संख्या है। अब तक चीन में COVID-19 के 78,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 2700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। चीन में 36,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से उबर भी चुके हैं, लेकिन अब संक्रमण के मामले चीन के बाहर अन्य देशों में बढ़ रहे हैं। 49 देशों में मामलों की संख्या बढ़कर 4300 से ज्यादा हो गई है और 67 लोगों की जान जा चुकी है। डेनमार्क, एस्टोनिया, लिथुएनिया, नेदरलैंड्स और नाइजीरिया में पहली बार नए मामलों का पता चला है और सभी मामलों के तार इटली से जुड़े बताए गए हैं। UN एजेंसी के मुताबिक अभी इस बात के पक्के सबूत नहीं है कि वायरस खुले में आसानी से समुदायों में फैल रहा है, और जब तक ऐसा रहेगा तब तक वायरस को रोक पाना संभव है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सबसे अहम उपाय संक्रमण फैलने की कड़ी को तोड़ना बताया गया है। साथ ही वैक्सीन विकसित करने और वायरस संक्रमण के उपचार को ढूंढने का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक विश्व में 20 से ज्यादा वैक्सीनों पर काम चल रहा है और कई उपचारों को क्लिनिक में परखा जा रहा है, जिसके पहले नतीजे कुछ हफ्तों में सामने आ जाएंगे। पश्चिमोत्तर सीरिया में हिंसक संघर्ष में तेजी आने से गहराती चिंता के बीच UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने सभी पक्षों से भीषण लड़ाई के कगार से वापस लौट आने की पुरजोर अपील की है। सीरिया के इदलिब प्रांत में तुर्की और रूस का समर्थन प्राप्त सीरियाई सुरक्षा बलों में लड़ाई तेज होने से हालात खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। महासचिव गुटेरेश ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालात को पूरी तरह बेकाबू ना होने देने के लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरत तत्काल युद्ध विराम की है।
This is one of the most alarming moments across the duration of the Syrian conflict. Without urgent action,
सीरिया में हिंसक संघर्ष की अवधि में ये सबसे चिंताजनक लम्हों में से एक है। बिना जरूरी कार्रवाई के हिंसा और भड़कने का खतरा बढ़ रहा है, और हमेशा की तरह इसकी सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक चुका रहे हैं। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। सीरिया में लड़ाई तेज होने के बाद हालात पर चर्चा के लिए शुक्रवार को सुरक्षा परिषद का आपात सत्र बुलाया गया है। UN प्रमुख ने दोहराया है कि यह समय कूटनीति को अवसर देने का है और लड़ाई का रुकना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने सोमवार को जिनीवा में मानवाधिकार परिषद के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए 7 प्रमुख क्षेत्रों में कार्रवाई की पुकार लगाई है। उन्होंने मानवाधिकार परिषद को अंतर्राष्ट्रीय संवाद व सहयोग का आधार बताते हुए कहा है कि विश्व भर में मानवाधिकारों पर हो रहे प्रहारों से वो चिंतित हैं। एक रिपोर्ट के साथ अंशु शर्मा।
महासचिव गुटेरेश ने मानवाधिकारों की अहमियत का उल्लेख करते हुए बताया कि ये लोगों की गरिमा और मूल्य से जुड़े हैं।
Human rights are our ultimate tool to help societies grow in freedom, to ensure equality for women and girls.
समाजों को आजादी में बढ़ने देने के लिए मानवाधिकार हमारा परम जरिया है, लड़कियों व महिलाओं के लिए समानता सुनिश्चित करने का, टिकाऊ विकास को बढ़ाने का, हिंसक संघर्ष की रोकथाम, मानवीय पीड़ा को कम करने और एक न्यायपूर्ण व न्याय संगत दुनिया के निर्माण के लिए. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द. मौजूदा दौर में मानवाधिकारों के लिए बड़ी चुनौती पैदा हो गई है और कोई भी देश इससे अछूता नहीं है. युद्ध भूमि में बमबारी और भुखमरी से जूझते आम नागरिक, मानव तस्करों के चंगुल में फंसे पीड़ित, शोषण व दासता का शिकार लड़कियां व महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ताओं व पत्रकारों का दमन और अल्पसंख्यकों, प्रवासियों, शरणार्थियों व LGBT समुदाय के खिलाफ बढ़ती नफरत. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सभी कार्यों के मूल में मानवाधिकारों को बताते हुए कहा कि UN की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर वे 7 क्षेत्रों में कार्रवाई की पुकार लगा रहे हैं. 7 सूत्री कार्य योजना में मुख्य रूप से इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है. टिकाऊ विकास का 2030 एजेंडा असमानता के सभी रूपों और हर प्रकार के भेदभाव का अंत करने पर केंद्रित है. मानवाधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण अपनाकर विकास को स्थायी और समावेशी बनाया जा सकता है. UN प्रमुख ने संकट के रोकथाम की रणनीति में मानवाधिकारों के सम्मान को अहम माना है. इसके तहत ह्यूमन राइट्स अपफ्रंट जैसी महत्वपूर्ण पहलों को बढ़ावा देते हुए विश्लेषण के अलावा विभिन्न देशों में UN टीमों में मानवाधिकार परामर्शदाताओं की उपस्थिति को भी बढ़ाया जाएगा. महिलाओं के मानवाधिकारों के बगैर सभी के लिए मानवाधिकारों को संभव नहीं बनाया जा सकता. UN महासचिव ने सभी देशों से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियों को समर्थन देने का आग्रह किया है. महासचिव गुटेरेश ने चिंता जताई कि दुनिया भर में नागरिक समाज और मानवाधिकारों के लिए स्थान सिकुड़ रहा है. ऐसी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और संस्थाओं में नागरिक समाज की आवाजों को शामिल करने के प्रयास हो रहे हैं, जिनमें युवाओं और महिलाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है. महासचिव गुटेरेश ने अपनी कार्य योजना में लोगों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ धरती को हासिल करना बेहद अहम बताया है. बहुपक्षवाद को पहले से कहीं ज्यादा समावेशी, आपस में जुड़ा हुआ बनाना होगा और इसके केंद्र में मानवाधिकारों को रखना होगा. नई टेक्नोलॉजी मानवाधिकारों के लिए कई चुनौतियों को पैदा कर रही है. निगरानी, दमन, ऑनलाइन उत्पीड़न और नफरत से अधिकारों का उल्लंघन व निजता का हनन हो रहा है. इस वजह से ऑनलाइन माध्यमों पर मानवाधिकारों का ख्याल रखा जाना चाहिए और असरदार ढंग से डेटा की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है.
और जिनेवा में मानवाधिकार परिषद के 43वें सत्र के दौरान ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट ने भारत में नागरिकता संशोधन कानून के बाद उपजे हालात और राजधानी नई दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान हुई मौतों पर गहरी चिंता जताई है. मानवाधिकार प्रमुख ने गुरुवार को जिनेवा में सत्र के दौरान कहा कि सभी समुदायों के भारतीयों ने बड़ी संख्या में शांतिपूर्ण ढंग से कानून के प्रति अपने विरोध को दर्ज कराया है, लेकिन अब इसने व्यापक रूप से अंतर सामुदायिक हमलों का रूप ले लिया है और 23 फरवरी से अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है. उन्होंने सभी से हिंसा की रोकथाम की अपील की है. गुरुवार को UN महासचिव के प्रवक्ता स्टेफान दुजैरिक ने दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि महासचिव हाल के दिनों में हिंसा में लोगों की मौतों से दुखी हैं. उन्होंने संयम बरतने और हिंसा से परहेज करने की अपील की है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने 21वीं सदी को महिलाओं के लिए समानता सुनिश्चित करने वाली सदी बनाने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा है कि जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की बराबर हिस्सेदारी विश्व के सुरक्षित भविष्य, स्थिरता, हिंसक संघर्ष की रोकथाम और टिकाऊ व समावेशी विकास के लिए अहम है. उन्होंने लैंगिक असमानता और महिलाओं व लड़कियों के प्रति भेदभाव को एक ऐसा अन्याय करार दिया है जो विश्व भर में व्याप्त है. ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर अंशु शर्मा.
न्यूयॉर्क शहर के द न्यू स्कूल में शिक्षकों व छात्रों को संबोधित करते हुए महासचिव ने कहा कि जिस तरह दास्ता और औपनिवेशवाद पिछली सदियों के दाग थे, महिलाओं के लिए असमानता 21वीं सदी में शर्मिंदगी का सबब है.
Everywhere, women are worse off than men simply because they are women.
हर जगह महिलाएं पुरुषों से खराब हालत में हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महिलाएं हैं. प्रवासी व शरणार्थी महिलाओं, विकलांगता का शिकार महिलाओं और अल्पसंख्यक महिलाओं को बड़े अवरोधों का सामना करना पड़ता है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द. انہوں نے جیون کے ہر کھیتر میں مہیلاؤں کی برابر حصے داری کو استھرتا، ہنسک سنگھرش کی روک تھام اور ٹکاؤ و سماویشی وکاس کے لیے اہم بتایا ہے۔ یو این پرمکھ نے کہا کہ مہیلا راشٹرادھیکشوں نے مہیلاؤں کی کشمتا پر اٹھے سندیہوں کو دور کر دیا ہے اور ملالا یوسف زئی اور نادیا مراد جیسی یووا مہیلائیں بادھاؤں کو پار کر نیترتو کے نئے معائنوں کو گڑھ رہی ہیں۔ اس کے باوجود مہیلا ادھیکاروں کی استھتی چنتا جنک ہے اور اسمانتا و بھید بھاؤ ہر جگہ عام بات ہو گئی ہے۔ انہوں نے پانچ ایسے کھیتروں کا ذکر کیا جہاں لینگک سمانتا کو حاصل کرنے سے دنیا کی کایا پلٹ کی جا سکتی ہے۔ سنیکت راشٹر مہیلاؤں کو ہنسک سنگھرش کی روک تھام، شانتی نرمان اور مدھیستھتا کے پریاسوں کے کیندر میں رکھنے کے لیے سنکلپت ہے۔ ساتھ ہی مہیلا شانتی رکشکوں کی سنکھیا کو بھی بڑھایا جائے گا۔ جلوایو پریورتن اور اس کے دشپربھاؤ پروشوں دوارا لیے گئے فیصلوں کا نتیجہ ہیں جن کا مہیلاؤں و لڑکیوں پر زیادہ اثر پڑا ہے۔ حال کے ادھیان درشاتے ہیں کہ مہیلا ارتھشاستری اور سانسد ٹکاؤ اور سماویشی نیتیوں کا زیادہ سمرتھن کرتے ہیں اور نجی جیون میں پریاورن پر اثر کو کم کرنے کے لیے زیادہ تیار ہیں۔ جلوایو ایمرجنسی کو ہرانے کے لیے لینگک سمانتا استھاپت کرنا ضروری ہے جس میں پروش بھی آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ وشو بھر میں پروشوں دوارا کمائے گئے ہر ایک ڈالر پر مہیلائیں 77 سینٹ کماتی ہیں اور اس ویتن کی کھائی کو پاٹنے کے لیے ورش 2055 تک کا سمے لگ سکتا ہے۔ مہیلاؤں کے لیے سمان آرتھک ادھیکار و افسر، سبھی کے لیے کام کرنے والے نیایوچت ویشویکرن کے نرمان کے لیے انیوارے ہے۔
ٹکاؤ وکاس ایجنڈا کے ساتویں لکشے میں سبھی کے لیے کفایتی، بھروسے مند، ٹکاؤ اور آدھونک ارجا سنشچت کرنے کا لکشے رکھا گیا ہے۔ دور دراز کے علاقوں میں گرامین سمودایوں کی بجلی تک پہنچ تو بہتر ہوئی ہے، لیکن سوچھ ارجا کے کھیتر میں اب بھی کئی پرکار کی اسمانتائیں ہیں۔ نیو یارک استھت سنیوکت راشٹر مکھیالے میں اس سپتاہ وکاس نیتی کی سمیتی کی بیٹھک ہوئی جس میں بھارت میں ارجا، پریاورن اور جل معاملوں پر پریشد کے سنستھاپک اور مکھیہ کاریکاری ادھیکاری ارونبھا گھوش بھی شامل ہوئے۔ یو این نیوز کے ساتھ بات چیت میں انہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ سوچھ ارجا کے کھیتر میں کس طرح کی اسمانتائیں ویاپت ہیں۔
دنیا میں 1 بلین لوگ، 100 کروڑ جیسے لوگوں کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے اور کچھ 200 کروڑ لوگوں کے پاس سوچھ ایندھن نہیں ہے کھانا پکانے کے لیے، اور کچھ سالوں پہلے تک بھارت میں ان کی آبادی سب سے زیادہ تھی۔ پچھلے 10 سالوں میں بھارت نے کافی پرگتی کیا ہے دونوں ایشوز پہ، لیکن اسمانتا رہ جاتا ہے۔ اس کے کافی کارن ہیں۔ ایک تو صرف ایک الیکٹریسٹی کا ایک تار آپ کے گھر میں آنے کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس میں الیکٹریسٹی آئے، کتنے گھنٹوں کے لیے آئے، کس وولٹیج پہ آئے اور کس پرائس پہ آئے جو آپ افورڈ کر سکیں۔ تو اسی لیے ہمیں کنیکشنز کے بیونڈ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پر انیکوالٹی ہے، اور جب ہم زیادہ غریب پرانتوں میں دیکھتے ہیں وہاں یہ افورڈیبلٹی کا جو پرابلم ہے یا ریلائبلٹی آف سپلائی کا جو پرابلم ہے وہ رہ جاتا ہے۔ سوچھ ایندھن میں بھی یہ چیلنج رہ جاتا ہے۔ ہر مہینے ایل پی جی سلنڈر کو بھرنے کے لیے پیسہ ہے کہ نہیں، گرامین علاقوں میں ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرشپ ہے کہ نہیں، اس کے اوپر ایک جینڈر انیکوالٹی کا بھی بات آ جاتا ہے۔ اگر گھر کے استریوں کو یہ ڈسیشن پاور نہ رہے کہ ہر مہینے ایل پی جی سلنڈر بھرنے کا اور اس پہ خرچ کرنے کا، اور وہ صرف ڈسیشن پاور مردوں کے پاس رہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بھی یہ اسمانتائیں رہ جاتے ہیں۔ یہ جو اسمانتائیں ہیں وہ کنیکشنز کے بیونڈ جا رہے ہیں، وہ جینڈر پہ بیسڈ ہے، افورڈیبلٹی پہ بیسڈ ہے، ریلائبلٹی پہ بیسڈ ہے، اور جب تک ہم یہ ایک جیسے کہتے ہیں ملٹی ڈائمینشنل روپ سے یہ انرجی ایکسس کے لیے ہم نہ کام کریں، یہ اسمانتائیں رہ جائیں گی۔
بھارت اور خاص طور پہ جو دکشن ایشیا کے دیش ہیں ان کے لیے ایک یہ اہم لمحہ ہے جس میں وہ وکاس کے راستے پر جا سکتے ہیں، لیکن ایک ایسے وکاس میں جو سوچھ وکاس ہے، جو جس میں صاف ارجا کا استعمال کیا گیا ہے، اس راستے پر جانے میں چنوتیاں کیا ہیں سنکشیپ میں اگر آپ بتائیں، اور پھر اس کے سمادھان۔
سب سے بڑا چنوتی اور سب سے بڑا اپرچونیٹی ایک ہی ہے، امیجنیشن کا، ویژن کا۔ یہ ویژن اور امیجنیشن کا ایک کانسیکوینس بنتا ہے کہ تب ایک جو میں کہتا ہوں ڈائریکشن آف ٹریول بن جاتا ہے، کہ اب یہ انویسٹرز کو، ڈیولپرز کو، ٹیکنالوجی انوویٹرز کو پتا چل گیا ہے کہ بھارت کا جو الیکٹریسٹی سسٹم ہے وہ اب کلینر الیکٹریسٹی سسٹم کی طرف جا رہا ہے۔ बांग्लादेश हो, नेपाल में हाइड्रो पावर ले लें, भूटान में हाइड्रो पावर ले लें, श्रीलंका में विंड पावर ले लें, आप कहीं पे भी देखिए, अगर आपका विजन एक्सपेंसिव रहे तो काफ़ी चुनौतियां हट जाती हैं। लेकिन सिर्फ एक विजन रखना काफ़ी नहीं है, विजन विदाउट एक्शन इज ओनली अ ड्रीम। तो वो सपना ना रह जाए, वो यू नो रियलिटी बने, उसके लिए जो फाइनेंशियल सॉल्यूशंस की मैंने बात किया, बिजनेस मॉडल्स का बात किया, वो भी है। एक और चीज़ है जो चुनौतियों को हटा सकता है, और वो है हम किसके लिए और किसके प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ सौर ऊर्जा या वायु ऊर्जा को केवल एक बड़े इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें और सोचें कि सिर्फ इसमें अरबों का इन्वेस्टमेंट हो बस वो काफ़ी रहेगा, तो काफ़ी चैलेंजेस रह जाएंगे। अगर हम उस हमारा एक आउटलुक बदल लें इस पर कि ये हम किसके सॉल्व कर रहे हैं, हम एक गरीब किसान का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसके पास सिंचाई का पानी नहीं है, मैं उसको कैसे मॉडर्न एनर्जी से ऐसा एक वाटर सोलर इरिगेशन पंप से पानी निकालने का सोल्यूशन दूँ ताकि उसका खेती उत्पादन बढ़ जाए, मैं शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे बढ़ाऊं जो बैटरीज के बेसिस पे बसेस चले या बैटरी स्वैपिंग पे बसेस चले, मैं स्लम इलाकों में या लो इनकम हाउस होल्ड्स के घरों पे कैसे रूफटॉप सिस्टम्स लगाऊं ताकि उनके जो बिजली का बिल है वो मंथ टू मंथ घटते रहे। जब हम गरीब को अपना सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट बना दें कि हम इसके लिए हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो बड़ा जो इमेजिनेशन है और छोटे घरों के लिए और गरीब घरों के लिए जो सॉल्यूशंस हैं उन दोनों में एक ब्रिज बन जाता है, तो और वो छोटे छोटे सॉल्यूशंस का एक एग्रीगेट बन जाता है बड़े बड़े स्केल पे डिप्लॉयमेंट के लिए।
ये थे भारत में ऊर्जा, पर्यावरण और जल मामलों पर परिषद के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणाभा घोष। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही, सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए, नमस्कार।